ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के विभिन्न भागों में तनाव, अशांति और अस्थिरता की स्थिति है। ऐसे में योग शांति का मार्ग दिखाता है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व कर रहे थे। श्री मोदी ने विश्व समुदाय से योग दिवस को मानवता के लिए योग 2.0 की शुरूआत के रूप में मनाने का विशेष आग्रह किया। उन्होंने कहा कि योग अब व्यक्तिगत अभ्यास न रहकर वैश्विक भागीदारी के माध्यम के रूप में उभरा है।
योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा, लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0 वेयर इनर पीस बिकम्स ग्लोबल पॉलिसी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वैश्विक समुदाय अब योग के प्रति अधिक सम्मान रखता है और महाद्वीपों के लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। वे आज देहरादून में पुलिस लाइन में आयोजित योग शिविर को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि योग केवल व्यायाम का एक रूप नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली का आधार है।
योग अभ्यास करने से व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ती है। योग के अनेक प्रशिक्षण, प्राणायाम एवं योगासन की उपयोगिता बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि किस प्रक्रिया को करने से किन किन रोगों का प्रतिरोध हो सकता है। आजकल जीवनचर्या से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम में भी योग चिकित्सा को उपयोगी माना जाता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि योग कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और मन की शांति को बढ़ावा देता है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में योग सत्र में हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग ने भी नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। विश्व में आज हजारों योग उत्साही लोगों ने स्वास्थ्य, ध्यान और दीर्घकालिक जीवन पर केंद्रित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने अमेरिका के समारोह की मेजबानी की। टाइम्स स्क्वायर पर विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की पत्नी योशिको इशिबा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारत क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए ऑपरेशन सिंधु के तहत नेपाल और श्रीलंका के लोगों को ईरान से सुरक्षित निकाल रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया है कि नेपाल और श्रीलंका की सरकार के अनुरोध के बाद भारत ने यह कदम उठाया है। ऑपरेशन सिंधु का विस्तार क्षेत्रीय सहयोग और मानवीय सहायता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ईरान और इसराइल के बीच दूसरे सप्ताह में भी हवाई हमले जारी हैं। कूटनीतिक प्रयासों के बाद भी दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। तेहरान के परमाणु प्रयासों के बारे में अमरीकी प्रशासन के भीतर गहरे विभाजन के उजागर होने से इसराइल और ईरान युद्ध को रोकने के कूटनीतिक प्रयासों को झटका लगा है। इस बीच 57 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस्लामिक सहयोग संगठन ने शनिवार को इस्तांबुल में एक बैठक की। इसमें ईरान के विदेश मंत्री भी उपस्थित थे। ईरान ने कहा है कि इसराइल के हमले जारी रहने के बीच वो अपने परमाणु कार्यक्रम के भविष्य पर विचार विमर्श नहीं करेगा। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों के साथ कल जेनेवा में बैठक के बाद ईरान ने यह टिप्पणी की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत के साथ वर्ष 2030 तक दीर्घावधि सहयोग की कार्ययोजना जल्द ही पूरी हो जानी चाहिए। श्री पुतिन ने कल सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 19 जून तक 4.86% बढ़कर लगभग 5,45,000 करोड़ रुपए हो गया। पिछले वर्ष इसी अवधि में ये लगभग 5,19,000 करोड़ रुपए था। और क्रिकेट में भारत आज लीड्स के हेडिंगले में पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन 3 विकेट पर 359 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।